ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथरा श्रीमद्भागवत स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 12। अध्याय का नाम है मोहनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना और आज श्लोक संख्या 22। ताम वीक्ष्य देवा इति कंदुकलीलयेषद् व्रीडा स्फुटि स्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्टः श्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मा नात्मा नमंतिका उमां स्वगनाश्च वेद। धन्यवाद। शब्दार्थ सरलार्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ताम उसको वीक्षा देखकर देवः संभोगी इति इस प्रकार कंदुक लीलया गेंद खेलते हुए ईषद कुछ कुछ व्रीडा लज्जा से स्फुट अस्पष्ट स्मित हंसी से युक्त विसृष्ट भेजा हुआ कटाक्ष मुष्टः तिरछी चितवन से पराजित स्त्री प्रेक्षण उस सुंदर स्त्री को देखते हुए प्रतिसमीक्षण तथा निरंतर उसके द्वारा देखा जाकर विह्वल आत्मा जिसका मन विचलित हो ना नहीं आत्मानं स्वयं का अंतिके पास ही स्थित उमां अपनी पत्नी उमा को स्वगणांच तथा अपने पार्षदों को वेद शिवजी जान सके। तो जब शिवजी इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे तब वो कभी इन पर दृष्टि डालती और लजाकर से थोड़ा हंस देती। जो ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और इसने इन्हें ताका त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। पीछे बोलिए, जब शिवजी इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लजाकर से थोड़ा हंस देती। जो ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने इन्हें ताका त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। तात्पर्य, इस जगत का भाव बंधन यही है कि सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को और सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री को मोह सकते हैं। जब शिवजी ने सुंदर बालक को गेंद खेलते देखा तो ऐसा ही होने लगा। ऐसे मामलों में कामदेव का प्रभाव अत्यंत प्रधान रहता है। जब दोनों पक्ष अपनी भौंहें हिलाते हैं और एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं तब तो उनकी काम वासना उग्र हो जाती है। इस प्रकार की काम वासना का आदान प्रदान शिवजी तथा उस सुंदर स्त्री के बीच हुआ। यद्यपि उमा तथा शिवजी के गण उनके पास ही थे, ऐसा है भौतिक संसार में पुरुष तथा स्त्री के बीच आकर्षण। शिवजी को ऐसे आकर्षण से ऊपर माना जाता है किंतु वे भी भगवान विष्णु की मोहिनी शक्ति के शिकार बन गए। ऋषभदेव ने वासना पूर्ण आकर्षमय आकर्षणमय प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मृतो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृहचित्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहयम अहमेति। पुरुष तथा स्त्री का आकर्षण जगत का मूल सिद्धांत है। इसी भ्रांत धारणा के आधार पर जो स्त्री पुरुष के हृदय को बांधती है, मनुष्य अपने शरीर घर संपत्ति संतान संबंधी तथा धन से आकृष्ट हो जाता है होता है। इस तरह जीवन का मोह बढ़ता जाता है और मनुष्य मैं तथा मेरा के रूप में सोचने लगता है। जब स्त्री तथा पुरुष काम भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों ही पीड़ित हो उठते हैं और इस तरह से वे इस संसार से विविध प्रकार से बंध जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् कृष्णमास्य श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद्भागवतम क्लास में। और कथा शुरू करने से पहले मैं सबका आशीर्वाद लेना चाहूँगा ताकि ये जो इतना डिफिकल्ट प्रसंग है इसमें मैं कुछ बोल सकूँ और अपना शुद्धिकरण कर सकूँ, खासकर जितने वरिष्ठ वैष्णव है। तो प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है कि अब शिव जी जो है मोहिनी मूर्ति जो है प्रकट हो चुकी है और शिव जी उनको देख रहे हैं। और थोड़े समय के लिए जैसे प्रसंग ऐसा था जो शिव जी जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के शुरुआत में जब हलाहल निकला तब शिव जी आए और बाकी जितनी चीजें निकली किसी में भी नहीं आए। तो ये दर्शाता है कि शिव जी कितने कंपैशनेट हैं और कितने डिटैच्ड हैं। जब मुसीबतें आई हलाहल आया तो उसको फट से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं आया कि मुझे पिला दो हलाहल, लेकिन शिव जी केम फर्स्ट। और दूसरा जब बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे थे, रावत आया उच्चस्रव आया लक्ष्मी जी आई बहुत सारी चीजें निकली तो शिव जी बिल्कुल डिटैच्ड, मुझे नहीं चाहिए सर। फिर अंत में जब नेक्टर मिल गया तो नेक्टर को लेकर मोहिनी मूर्ति ने सारे देवताओं को पिला दिया। लेकिन शिव जी ऐसा सोच रहे कि मैं कितना बिरेफ्ट रह गया, उस वंचित रह गया उस अवसर से जिसमें भगवान ने स्वयं इस प्रकार का अद्भुत रूप धारण किया है। अब बस उनकी आसक्ति उस रूप को देखने के लिए हो गई। तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिव जी का इंटेंस डिजायर है भगवान की लीलाओं को देखने में सुनने में समझने। बाकी चीजें क्या हुई, अमृत किसको मिला, उच्चश्रवा किसको मिला, रावत किसको मिला, लक्ष्मी जी किसको मिली, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो भगवान का विशेष रूप है मोहिनी मूर्ति, उसको देखने के लिए वो पूर्ण रूप से लालायित हो गए। अब इतने ललायत हो गए कि स्वयं भी गए और साथ में किसको ले गए, अपने पार्षदों को भी लेकर के गए। ऐसा नहीं अकेले अकेले पहुंच गए वहां कि मुझे दिखा दो, अपने पार्षद में उमा जी भी हैं उनको भी लेके गए, उसके साथ साथ उनके नंदी बैल और जितने उनके पार्षद गण हैं, हो सकता है कि भूत पिशाच भी हो वहां पे, तो सभी के सभी आ गए। और शिव जी ने पिटिशन किया भगवान के समक्ष कि आप जो मुझे वो वाला रूप दिखाइए जिस रूप से आपने आकर्षित किया था सभी को, ऐसा उन्होंने ऐसा पिटिशन दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी ऐसी यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं हो रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि शिव जी ने ऐसा क्यों किया, अब लेकिन कोई भी गलत चीज करने से पहले व्यक्ति थोड़ा डरता है, थोड़ा शर्माता है या छिपके करता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं शिव जी न डर रहे न शर्मा रहे, बल्कि अपनी पत्नी को भी साथ में ला रहे हैं और पार्षदों को भी ला रहे हैं, सबको मोहिनी मूर्ति दिखाने के लिए ला रहे हैं। He is not ashamed of asking such things. बिल्कुल इस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इस तरह से पहले भी हम देखते हैं कि शिव जी इस प्रकार की चीजें, जैसे श्रीमद् भागवतम की कथा वो कर रहे हैं उमा को जंगा पे बिठा के, तो ये भी अपने आप में अजीब सा है कि अपनी पत्नी को कोई भी इस प्रकार से नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि किसी स्त्री को अपनी जगह पर बिठा के भागवत कथा कर दे। तो ये जो है शिव जी की दिव्य स्थिति को दर्शाता है कि शिव जी कितना ट्रांसेंडेंटल है इन छह, ये जो तीन प्रकार के मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, इनसे वो पूर्ण रूप से ट्रांसेंडेंटल है। और भी अन्य लीला हम देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे नित्यानंद प्रभु है, वो अवधूत है, वो मालिनी माता का दुग्ध पान करते हैं, वो भी अजीब सा लगता है कि इतने बड़े होकर के दुग्ध पान कर रहे हैं। फिर गोपियों को भी हम देखते हैं, जैसे गोपी गीत पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है, जो गोपियां कह रही कि हमारे वक्षस्थल में अपने कोमल चरणों को रखिए, इस प्रकार से। और सुखदेव गोस्वामी हैं, वो नग्न अवस्था में जा रहे हैं और वो भी भागवतम ऐसे प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब कई बार ऐसे चीजें सुनकर के लगता है कि ये किस प्रकार का है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, दोनों का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है। एक होता भौतिक प्लेटफॉर्म, एक होता आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म। ये पूरा का पूरा जो है वो अंतरंगा शक्ति का धनस्थ, दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, महात्मा अनस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति माश्रिता। जो महात्मा गण है, जो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के बहिरंगा शक्ति के अधीनस्थ नहीं होते, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीनस्थ होते हैं और इन प्रकार के बाह्य चीजों से आकर्षित नहीं होते। तो अब एक प्रश्न ये भी आता है कि ब्रह्मा जी ने भी, वो भी पीछे भागे थे, सरस्वती के पीछे भागे थे, लेकिन उनका भागना और इनके भागने में दोनों में अंतर है। और इसके अफेक्ट्स को हम देखेंगे कि जब शिव जी का ये सारा प्रसंग हो गया, फिर लास्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनका जो डिवोशन है भगवान के प्रति वो और बढ़ गया, भगवान भी उनका गुणगान कर रहे हैं, वो भी फिर पार्वती को कह रहे हैं कि देखो मैंने पिछले पहले जो ध्यान लगाया था ना 1000 वर्षों तक, किस पे ध्यान लगाया था, इन्हीं विष्णु के ऊपर ध्यान लगाया था। तो उनका श्रद्धा, उनका डिवोशन जो है और इंक्रीज हो रहा है इस पास टाइम के बाद। लेकिन ब्रह्मा जी का जो भागना था, श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्णलाल दिनाथ बलदेव सुत्रा महारानी की, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और बाद में ब्रह्मा जी अशेम्ड भी होते हैं कि मैंने क्या किया, अपने मतलब मैंने जिसको प्रकट किया उसके पीछे भी भागा। लेकिन यहाँ पे शिव जी बिल्कुल भी अशेम नहीं हो रहे, बल्कि और गुणगान कर रहे हैं भगवान को और ग्लोरीफाइड फील कर रहे हैं, मतलब कृष्ण को गुणगान करके। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने बॉडी को छोड़ दिया कि इसी ये कैसी मैंने कह बॉडी जो पूरा लस्टी है, तो इस बॉडी को छोड़ देना अच्छा है. ही फेल्ट सो रिपेंटेंट दैट ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑल टुगेदर. लेकिन यहाँ पे शिव जी का वैसा प्रसंग नहीं आता है. वो और उनका जो श्रद्धा है, उनका जो विश्वास है, उनके जो भगवान के प्रति गुणगान है और इनक्रीज हुआ, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. और हम देखते हैं कि जो दैवीय प्रकृति और बहुत जो बहिरंगा प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है, कई बार दिखने में सेम लगती है लेकिन वो सेम होती नहीं है. प्रभुपाद जी इसको एक उदाहरण से समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक बिल्ली होती है, तो बिल्ली के मुंह में चूहा भी होता है कई बार, और बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा भी होता है कई बार. दिखने में लग सकता है कि ये दोनों मुंह में है, लेकिन दोनों के स्टेट ऑफ माइंड में काफी अंतर होता है. जो चूहा होता है उसकी मनोदशा क्या होती है? हाय मैं मरा, आपका खा चुकी, मेरे को अगला जीवन मेरा क्या होगा. बहुत डरा हुआ, बहुत ही भयभीत, बहुत ही असुरक्षित रहता है. लेकिन वही जब बिल्ली का बच्चा उसके मुंह में होता है तो कैसा फील कर रहा होता है? बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही आनंद में, और लगता है कि आज मम्मी मेरी कितना खुश है, कितना मुझे घुमा रही है सब जगह, इधर उधर कर मुझे इधर से ले जा रही है, कब उधर ले जा रही है, ये सो ब्लिसफुल, सो हैप्पी. तो उसी तरह दैवी प्रकृति और बहिरंगा प्रकृति, यही है. दिखने में लगता है कि दोनों एक जैसे एक्टिविटी है, लेकिन दोनों के मनोदशा से, दोनों का फैक्ट से हम पहचान सकते हैं कि कौन दैवी प्रकृति में आश्रित है और कोई बहिरंगा प्रकृति में आश्रित है. तो अब हम देखते हैं कि जो बहिरंगा प्रकृति में आश्रित में का भी कुछ प्रसंग है आपके नौवें स्कंद में, कि जिस प्रकार से पुरोरुवा जो है वो लैमेंट करते हैं जब उर्वशी के पीछे वो इतने पागल हो चुके होते हैं, तो कितना वो लैमेंट करते हैं, मैंने क्या इस स्त्री के पीछे अपना पूरा समय वेस्ट कर दिया. उसी तरह ययाति का भी हम प्रसंग देखते हैं कि वो भी कितना लैमेंट करते हैं कि ये उनको जब श्राप मिल जाता है कि अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते, कितना शेमलेस हो जाते हैं, अपने पुत्रों के पास जाते हैं कि मुझे जवानी दे दो. उनके पुत्र जवान होते हैं, मैं ठीक से एंजॉय नहीं कर पाया, मुझे जवानी दो. कितना वो सेमलेस और कितना चरित्रहीन हो जाते हैं और मांग भी लेते हैं जवानी. तो फिर सौभरी मुनि का भी प्रसंग देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो मानधाता की जितनी भी पुत्रियां थी 50 पुत्रियों के साथ विवाह करते हैं, 5000 पुत्र उत्पन्न कर देते हैं, फिर बाद में फिर पछताते हैं कि हाय मैंने क्या किया, कितना अच्छा था जब मैं पानी में था, कितना अच्छा से मेडिटेशन कर रहा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, बाहर आकर के मैंने कितना बड़ा गलत कार्य किया. तो ये आकर्षण, यहां भी आकर्षण हम देख रहे हैं, वहां भी आकर्षण, लेकिन वो आकर्षण का जो परिणाम है उसके परिणाम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार की ये प्रभाव को डालती है. तो बहिरंगा शक्ति का अधीनस्थ होता है, अंतरंगा शक्ति का अधीनस्थ होता है. यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में ग्लांस के बारे में बता रहे हैं, ग्लांसेस जो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण जो शुरुआत होता है. एक सुंदर स्त्री है वो पुरुष से तरफ आकर्षित होती है, और एक पुरुष जो है एक सुंदर स्त्री से आकर्षित होती है. लेकिन उनका जो जैसे कामदेव जो एरोज छोड़ते हैं, जैसे 5 प्रकार के एरोज होते हैं, कहाँ से शूट करते हैं, तो ऐसा बताया गया है कि ये जो हमारी भौएं होती हैं, ये भौं ये किस तरह एक्ट करती है, धनुष की तरह, और शूट करती है एरो कहां से, तो आंखों से शूट ऐसे कर. तो 5 तरह के जो है वो एरो चलाती है, खट 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 खट. तो स्तंभन, मादन और इस तरह से 4-5 और मुझे याद नहीं है वो. तो पहले देख के स्तंभित हो जाते हैं, फिर मदित हो जाते हैं, फिर एकदम से अग्नि जलने लगती है कि मुझे उसको प्राप्त करना है. तो ये तब इसी को हम इसको बहिरंगा शक्ति. अब इसके बाद जो सारी चीजें हैं को आकर्षण होता है, फिर गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर सारी चीजें जनस समूह अहम नमेती, फिर पुत्र, फिर सारा मैं और मेरा, पूरी कहानी शुरू हो जाती है. अब यही चीज बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति में कैसे परिवर्तित हो सकती है, एक और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे रामानुजाचार्य के शिष्य हुए, इनका नाम था क्या, धनुर्दास, तो वो भी जो है एक स्त्री के आंखों से आकर्षित थे। पूरा का पूरा प्रोसेशन ये कार्तिक के महीने से हमारी फेरी लगती है सुबह सुबह या शाम को फेरी लगती है, उसी तरह श्रीरंगा में भी फेरी लग रही थी। उसमें जो है उनके उत्सव विग्रह निकले हुए थे, इतने सुंदर उत्सव विग्रह थे, लेकिन वो जो धनुर्दास था वो देखा जा रहा था, किसको, वो जो स्त्री थी, स्त्री के भी आंखों को देखा जा रहा था, स्त्री के बहुत सारे फीचर, लेकिन सब किसके वो पॉइंट आउट कर रहा था, सिर्फ आंखों से इतना आकर्षित था। ये चीज कौन देख रहे थे, उनके गुरु रामानुजाचार्य। अजीब सा व्यक्ति है, भगवान के इतने सुंदर विग्रह हैं, इनको ना देख करके स्त्री की आंखों से आकर्षित हो जा रहा है, वो भी सेमलेसली, सभी लोग उनको देख रहे हैं फिर भी देखा जा रहा है, कितना सेमलेस हो गया, मतलब चरित्रहीन, लज्जाहीन। तो ये देख करके उनको बहुत बुरा लगा, इसको तो मैं ठीक करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कल जो है तुम सुबह सुबह आओ, मंगला आरती दर्शन करने के लिए आओ। तो फिर जब उनको मंगला आरती में बोला, अब मंगला आरती में आने से पहले रामानुजाचार्य जी ने स्पेशल प्रेयर्स किए, कि इसके अंदर जो काम वासना है और ये जो पर्टिकुलरली आंखों से आकर्षित है, और आप भी कैसे हैं कमल नयन, तो आप भी अपने आंखों से इसको आकर्षित कर लीजिए। तो वही बात, जब वो आए तब उन्होंने जब भगवान की आरती देखी, उनकी सुंदर आंखों को देखा, तो पूर्ण रूप से वो आकर्षित हो गए और फिर वो उनके आकर्षण को भूल गए। लेकिन इसमें हम देखें कि रामानुजाचार्य जी का स्पेशल रोल था, उन्होंने स्पेशल प्रेयर्स किए। तो काम वासना से मुक्त होने के लिए ठीक है, एक तो भगवान का हम आश्रय चाहिए, उसके साथ साथ एक कोई भक्त भी होना चाहिए जो हमें, हमारे लिए प्रार्थना करे कि इनको काम वासना से बाहर निकालो। तो रामानुजाचार्य जी ने उनके स्पेशल प्रेयर्स किए, तब भगवान ने उनके ऊपर स्पेशल मर्सी की। और फिर वही देखते धनुर्दास बाद में कैसा हो गया, उनकी शादी हो गई, और फिर जब उनके शिष्यगण आपस में लड़ते रहते थे और उसको देख करके थोड़ी ईर्ष्या भी होती थी धनुर्दास को देख करके, तब उनके शिष्य को बोला कि जाओ उसके घर में जितने सोने इत्यादि है उसको लेकर आओ। तो उनकी स्त्री जो है वो सोई हुई थी, तो फिर उनके शिष्यगण ने जो है एक तरफ का जो है सारा सोना इत्यादि निकाल लिया, और जो स्त्री थी उसने सोचा क्या कि दूसरे तरफ का भी इनको मिल जाए, तो इसलिए थोड़ी सी वो पलट गई, करवट बदल लिया, लेकिन वो डर के सब भाग गए वहां से। उसके बाद जो है फिर रामानुजाचार्य का ऐसा उन्होंने बताया, फिर अभी जाके फिर से देखो वहां पे क्या हो रहा है। तो फिर जब वो वार्तालाप कर रहे थे तो धनुर्दास अपनी स्त्री को डांट रहे थे कि तुम पलट क्यों गई, वैसे ही रहती, पत्थर की तरह लेटी रहती तो तुम्हारा सारा ले लेते, तो गुरु की सेवा करने के लिए आए थे तो ऐसा करना चाहिए था। तब देखिए कितना बदलाव आ गया उसी व्यक्ति में, जो पहले एक स्त्री के शरीर से उनकी आंखों से आकर्षित था, लेकिन गुरु की कृपा से भगवान की सुंदरता से वो फिर जो है किस प्रकार का उसमें परिवर्तन आ गया। तो इसीलिए इस प्रकार का जो बदलाव है, हाँ जैसे आंखों की बात हम कर रहे थे, तो एक प्रसंग ये आता है और एक प्रसंग और आता है आंखों को लेकर, बिल मंगल ठाकुर का। बिल मंगल ठाकुर थे, वो भी एक वैश्या से आकर्षित थे जिसका नाम था क्या, चिंतामणि। तो चिंतामणि के मुख से उनके गुरुजी ने बोला कि तुम क्यों ये मांस हाड़ इसके मज्जा बाइल म्यूकस स्टूल के शरीर से आकर्षित हो, ये है क्या, एक अच्छी पैकेजिंग और कुछ तो है नहीं, नथिंग लेस। तो इसलिए तुम इससे आकर्षित ना हो करके किससे आकर्षित हो, भगवान से आकर्षित हो। तो एक तत्क्षण उन्होंने छोड़ दिया उनको। फिर वो गए वृंदावन की तरफ, वृंदावन में जाते जाते रास्ते में फिर से एक स्त्री से आकर्षित हो गए, स्त्री जो है पानी भर रही थी, कुएं से निकाल रही थी पानी, सुंदर गा भी रही थी, और फिर पीछे 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 उनके घर पे पहुंच गए। घर पे जब पहुंचे तो ब्राह्मण ने बोला कि क्या आपकी सेवा कैसे करें, तो मिली सेवा कर सकते हो, अपनी स्त्री को मेरे साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अभी अकेले तुम चले जाओ वहां से। अभी देखिए ब्राह्मण कैसा था, उन्होंने ठीक है अपनी स्त्री को बोला उन्होंने। तो जब ही स्त्री से मिले तो उन्होंने बोला कि आपने जो हेयर पिन लगाया है वो हेयर पिन मुझे दे दो, बाल खोल के वो हेयर पिन दे दो। तो उन्होंने हेयर पिन लिया। अब पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों फोड़ दिया। यही वो आंखें हैं जिसकी वजह से मैं बार बार गिर रहा हूं, पतित हो रहा हूं, आकर्षित हो रहा हूं स्त्री के शरीर से। तो अपनी आंखों को ही फोड़ दिया। तो लेकिन उसके बाद वही बिल मंगल ठाकुर बाद में जब वृंदावन गए वहां पर उन्होंने भजन किया, तब उन्होंने क्या होता था, जब वो श्रृंगार करते थे भगवान का तो पहले ही बता देते थे कि भगवान ने ऐसा ड्रेस पहना है, ये उनके श्रृंगार हैं, इस कलर की माला पहनी, इस कलर का ड्रेस पहना है। तब वही आंखें भौतिक ना रह करके क्या बन गई, आध्यात्मिक बन गई। तो जब हम भगवान से आकर्षित होते, प्रभा जी इसमें एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक घर में, अगर आपको उस घर से उसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक अच्छा सा घर देना पड़ेगा, तब जाके उस पुराने घर को वो छोड़ेगा। किसी को आप रोड पे लाके नहीं रख सकते, खाली करो रोड पे आ जाओ। आश्रय सबको चाहिए, लेकिन प्रभा जी जो भौतिक आश्रय है उसको कहते हैं दुराश्रय, दुह आश्रय। ये बहुत बैड शेल्टर है, बहुत ही गंदा शेल्टर है, बहुत प्रताड़ित करता रहता है, लेकिन फिर भी लोग उसी के शेल्टर, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रोड में जाने से अच्छा कोई तो घर है, कुछ तो आश्रय मुझे मिला हुआ है। तो इसीलिए आश्रय ग्रहण करना है। ये जो निम्न लोअर टेस्ट है वो तभी छूटता है जब हायर टेस्ट मिलता है। बिना हायर टेस्ट लिए हुए लोअर टेस्ट को कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। कितना भी बोलता रहे मेरे अंदर लश नहीं है, मेरे अंदर काम नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, और कुछ नहीं करता, किसी ना चैंटिंग में लगा, ना रीडिंग में लगा, ना कोई सेवा में लगा, कुछ में खाली बैठा और कह रहा मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवतम में तीसरे स्कंद में कि एक जो बद्ध जीवात्मा है उसके अंदर ये सारी छह चीजें जो भूख प्यास इत्यादि है, उसके साथ साथ ये जो लस्ट है वो भी अग्नि की तरह हमेशा उसके अंदर जलती रहती है, उसको हमेशा प्रताड़ित करते रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता उसको प्रताड़ित ना करे। तो जब तक वो बैड शेल्टर को छोड़ करके सही शेल्टर में नहीं आएगा तब तक वो प्रताड़ित, एंग्जाइटी, टेंशन और परेशान रहेगा। इसलिए दुराश्रय जो बैड शेल्टर है उसको छोड़ करके सही शेल्टर माना, भगवान की शरण माना, गुरु के निरीक्षण में ये का आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारा जितना प्रसंग हुआ भगवान के अनुमति के अनुसार हुआ, भगवान भी उसमें उपस्थित थे, ऐसा नहीं इंडिपेंडेंटली सारी चीजें हो रही थी। इसलिए शिव जी को पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्राप्त था। तो उसी तरह हम देखते हैं कि कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे प्रभुपाद जी एक सन्यासी थे, शास्त्रों में कहते हैं कि सन्यासी को सात समुद्र पार करके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने सात समुद्र पार करके गए। कहां गए, मलेच्छों के देश में गए, पाश्चात्य देश में गए, वहां उनके बीच में प्रचार किया। लेकिन इनको यहां पूरा का पूरा क्या प्राप्त था, डिवाइन शेल्टर ऑफ गुरु, है ना, गुरु परंपरा भगवान। जैसे जलदूत में वो यात्रा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे जलदूत हैं उसको कौन चला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। उसी तरह वहां पे उन्होंने शादियां भी करवाई, सन्यासियों को शादी कराने की अनुमति है क्या, नहीं। हिप्पीज के बीच में गए, वहां पे उन्होंने प्रचार किया। तो इस तरह की बहुत ही अनकॉमन चीज उन्होंने कर दिखाई, जो कि सो कॉल्ड, इसलिए तो इतना क्रिटिसिज्म था भारत में जितने भी जात गोस्वामी थे सबने प्रभुपाद जी का इतना निंदा वो क्यों करते थे? यही तो कि ये इसने ये कर दिया वो कर दिया, जो मल्लेच्छ है उसको ब्राह्मण बना रहा है, उसको वैष्णव बना रहा है, टोटली वो है शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन इतने सारे अनकॉमन चीज सो कॉल्ड सिंफुल दिखने में लग सकता है लेकिन वो था नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा प्रोटेक्शन था। किसका प्रोटेक्शन? अपने गुरु का, श्री कृष्ण का, क्योंकि सारी चीजें उनकी पोटेंशी के अंतर्गत, उनके अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत सारी चीजें हो रही थी। तो इसीलिए फिर रॉक कॉन्सर्ट इत्यादि भी हमें गया। और अभी भी आप देखते हैं प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जो विदेशों में जाते हैं, पैंट शर्ट में जाते हैं, वहां पे वो प्रचार करते हैं। तो दिखने में लग सकता है ये कैसे सन्यासी हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, लैपटॉप लेके घूमते हैं, इनका तो बैंक अकाउंट भी है, लोग कई इस तरह से एलिगेशन मिल जाते हैं। लेकिन वो किसके हैं? अंतर्गत है, अधीनस्थ है। वहीं पे एक दूसरा शिष्य है जो आराम से बैठा हुआ मठ में, लेकिन अधीनस्थ नहीं है। तो कौन माया में है जो पैंट शर्ट पहन के प्रचार कर रहे हैं, कोट टाई पहन के प्रचार कर रहे हैं, या फिर और गुरु के अंतर्गत रह के कर रहा है, गुरु के शेल्टर में रहकर कर रहा है, गुरु के आश्रम में रह के कर रहा है, वो माया में है, या फिर वो जो मंदिर में आराम से बैठा हुआ है कूल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु से उसका कोई लेन देन नहीं, कोई आश्रय नहीं, जो हो रहा होने दो बस। तो ऐसे शिष्यों को भक्ति सिद्धांत महाराज जी क्या बोलते हैं कि आपका जो भजन है वो कैसा है? दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव, कि तुम किस प्रकार के वैष्णव हो, और तुम्हारा जो भजन है वो क्या है? केवल कैटअप। और किस लिए तुम भजन कर रहे हो? प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, ये तुम्हारा भजन है। दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव, तो माया में कौन है? तो माया और बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति में ये डिफरेंस है कि किसका शेल्टर लिया हुआ है। महात्मा नस्तु माम पार्था दैविम प्रकृति माशता, हु शेल्टर वी हैव टेकन। और भगवान का, गुरु का, वरिष्ठ वैष्णवों के अंतर्गत रहकर के सेवा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति, नहीं तो बहिरंगा शक्ति में दिखने में लग सकता है कि हाँ जी बहुत अच्छे हैं, ये हैं, बढ़िया हैं, लेकिन है क्या वो? माया में। तो इसलिए ये डिफरेंशिएट करता है कि हम किस प्रकार से किसके आश्रय में हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दिखने में लग सकता है कि भगवान ने शिव जी को डिफीट कर दिया। इट वॉज एन एपरेंट डिफीट ऑफ लॉर्ड शिवा। लेकिन शिव जी इस डिफीट में भी कैसे थे? बहुत खुश थे। अब देखिए आगे आप पढ़ेंगे तो इतना जलील किया उनको, एक तरह से देखिए तो जलीली हुआ व्यक्ति भाग रहा है, पढ़ेंगे उसका वीर स्खलित हो रहा है। और फिर भगवान क्या कर रहे हैं कि खूब भगा रहे हैं, कहां कहां लेके जा रहे हैं, जितने जंगल पहाड़ जहां ऋषि मुनि ध्यान लगा रहे हैं वहां पे शिव जी भाग रहे, पीछे पीछे एक स्त्री के पीछे भाग रहे। कितना जलील वाली बात है, इतना बड़ा व्यक्ति वैष्णव यथा संभव, इतने बड़े वैष्णव हैं वो भाग रहे हैं किसके पीछे? एक स्त्री के पीछे। इससे खराब की चीज कहीं हो सकती है? कितना ह्यूमिलेशन था एक तरह से। लेकिन फिर भी क्या शिव जी ह्यूमिलेटेड फील किए? ही वॉज नॉट एट ऑल ह्यूमिलेटेड, बिकॉज ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाई हुम? हिज ओन ईस्ट देव और गुरु, एक तरह से उनके गुरु। तो एक जो अच्छा शिष्य है वो गुरु के इस प्रकार के ह्यूमिलेशन से बड़ा प्रसन्न होता है। वह ऐसा नहीं सोचता हाय मेरे गुरु ने मैं क्या क्या मेरा अपमान कर दिया, दस लोगों के बीच में बोल दिया मुझे तुम ऐसे हो वैसे हो ऐसे, क्या गुरु जो मुझे समझते नहीं, आज से मैं आपको गुरु नहीं मानता हूं, छोड़ता हूं आपका शेल्टर, छोड़ता हूं आप सच्चे ये आप सच्चे वो, गुरु चेंज कर दिया, संस्था से बाहर चले गए। लेकिन एक अच्छा शिष्य वो है जो गुरु को ह्यूमिलेशन में ही फील चॉइस, वाह कितना अच्छा, मेरे गुरु जी कितना मुझे लाइक करते हैं। जैसे जगदानंद पंडित को और चैतन्य महाप्रभु ना, सनातन गोस्वामी को यही तो था कि आपके जो क्लोज है वो कौन है, जगदानंद पंडित है, क्योंकि जगदानंद पंडित ने उनको बोला कि आप जो वृंदावन जाइए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला कि जगह की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम्हें बोलता है कि बाहर जाने। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, जगदानंद पंडित से करते हैं। तो गुरु की चेस्टाइजमेंट और इस प्रकार की ह्यूमिलेशन से जो एक अच्छा शिष्य है वो क्या करता है, और जॉयस फील करता है, ना कि और शेल में चला जाता है। मेरे गुरु जी ने मुझे डांट दिया, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, एकदम शेल में चला गया, एकदम जोन बस कट ऑफ। तो जब आश्रय समाप्त हो गया, प्रोटेक्शन ही समाप्त हो गया, तो उसकी भक्ति कहां से होगी, तो खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत होता है इनर्शिया, अब पंखा चला रहे हैं, पंखा घूम रहा है बहुत तेजी से, उसको बंद कर दीजिए फिर भी वो घूमेगा, लग रहा पंखा तो चल ही रहा है, लेकिन कितने देर चलेगा। पावर कट ऑफ, थोड़े समय के बाद क्या होगा, धीरे 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 बंद हो गया। तो इसी प्रकार से वो जो पावर है, कनेक्शन का पावर है, गुरु परंपरा से कनेक्शन का पावर है, उसको कट ऑफ कर दिया तो थोड़े समय के लिए व्यक्ति घूमेगा, हाँ बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूं, बहुत अच्छी माला हो रही है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन धीरे 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 स्टॉप इट, बंद हो जाता और फिर माया किशोर में व्यक्ति आ जाता है। इसीलिए ये काफी आवश्यक है कि apparently defeat of a disciple is also a victory। उसको defeat के लिए स्तर पे नहीं लाया मैं, defeated ना, it's a victory। अच्छा है कि एक शिष्य जो है एक गुरु से इस प्रकार से चेस्टाइज, मतलब शिक्षा उसको प्राप्त हो। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से मिले पहली बार, तो उस समय भी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और जब उन्होंने प्रश्न किया कि आपका ऐसा संदेश जो है कौन सुनेगा, क्योंकि हमारा देश क्या है, अभी गुलाम है, कोई नहीं सुनने जा रहा हमारी बातें। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया कि हम वेट नहीं कर सकते, कृष्ण भावना भावित जो है वो वेट नहीं कर सकता है कि किसका शासन होगा, भारत देश आजाद होगा, आज आजादी हो गया तो कौन सी क्या हो गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लीलामृत में लिखा है, वे पराजित अनुभव करने लगे लेकिन यह उन्हें पसंद आया। वो पराजित अनुभव कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ प्रश्न ऐसे पूछे थे, लेकिन स्टिल ही वॉज हैप्पी। अचानक उन्हें अनुभूति हुई कि वे कभी पराजित नहीं हुए थे, और इससे पहले वो कभी नहीं पराजित हुए थे। जितने भी किसी से वाद विवाद होता था तो प्रभुपाद जी लॉजिक में उनको कौन डिफीट कर सकता, लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वेन ही वॉज डिफीटेड बाई हिज ओन स्पिरिचुअल माई भक्ति सिद्धांत महाराज, तो उनको अच्छा लग रहा था। परंतु इस पराजय से कोई हानि नहीं थी, यह बहुत बड़ा लाभ था, यह बहुत बड़ा लाभ था। तो इस प्रकार से कि जो सच्चे मन का शिष्य है गुरु से पराजित होने के बाद भी बड़ा अच्छा महसूस करता है, फिर एनलाइटेंड एंड हैप्पी। उसी प्रकार से देखते हैं कि एक कथा आपने भी सुनी होगी धौम्य ऋषि की, और उनके जो शिष्य थे उपमन्यु, तो धौम्य ऋषि के जो शिष्य थे थोड़े हेल्दी से थे, अच्छा तगड़ा बॉडी था। तो बोले कि तुम तो शिष्य हो भाई, तुम्हें तो थोड़ा दुबला पतला होना चाहिए, क्या है ये ब्रह्मचारी आश्रम में हो कि कौन सा आश्रम, क्या खाते हो? तो उन्होंने बोला जो कैसे खाते हो इतना ले मैं जाता हूं भीख, क्योंकि उस समय जो प्रथा थी वो भी भिक्षाटन का था, क्योंकि ब्रह्मचारी जाते थे जो भिक्षाटन मिलता था उसको पाते, तो जो भिक्षाटन मिलता है वो मैं पा लेता हूं। अरे तुम जो भिक्षाटन करते हो वो किसका है, किसके बिहाफ पे करते हो? प्रोग्राम में जाते हो, वहां जो दक्षिणा मिलती है वो किसके बिहाफ में जाते हो? वो किसका है? तो गुरु के शेल्टर में तो सब कुछ तो गुरु को मिलना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी उनको मिलता था गुरु जी को दे देते थे। फिर भी देखा अभी भी बड़ा मोटा तगड़ा है। अभी भी इसका कुछ हुआ नहीं। चलो आप कैसे मोटे तगड़े हो, क्या करते हो? लगे मैं सेकंड हाफ में जाता हूं, फर्स्ट हाफ में जो लाता हूं सब आपको समर्पित करता हूं, लेकिन जो सेकंड हाफ में आता है उसको मैं अपने पास रखता हूं। नहीं, सब कुछ गुरु का है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ऑल हाफ। अच्छा, वो भी दिया। फिर भी देखा अभी भी मोटा तगड़ा है। अब क्या करते हो? बोला कि मैं दोनों तो दे देता हूं लेकिन साथ में गाय भी चराता हूं, और गाय जो चराता हूं तो जो डायरेक्ट मिलता है दूध, डायरेक्ट फ्रॉम काउस मिल्क, पूरा डायरेक्ट पीता हूं, उससे हो जाता है। अरे नहीं, वो भी दूध जो है वो गुरु का है, ऐसे बिना पूछे क्यों पीते हो? अच्छा, फिर देखा फिर भी बड़े मोटे तगड़े हैं, अब क्या करते हो? लो जो बछड़ा है वो जब पी लेता है ना, तो उसके थन में, गाय के थन में थोड़ा सा फोम लगा हुआ रहता है, उसको चाट लेता हूं। तो मत चाटो। उसको भी मत चाटो। अब देखिए गुरु कितने हैवी है ना, गुरु का मतलब ही हैवी है, हैवी होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे। और शिष्य अब देखिए कैसे हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, बोल सकते थे ठीक है ऐसे पेट भरा मैं क्या करूं। इस मेरा ऐसे ही है, शरीर की बनावट है। बोल सकते थे, छुपा सकते थे चीजों को, लेकिन ही सो ऑनेस्ट, मैं जस्ट पुटिंग अप एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा समय नहीं, ये मत करो ठीक है, अब ये मत करो ठीक है, अब ये मत करो ठीक है, ही इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। अब क्या हुआ, अब वो फिर चराने गए जंगल में, फिर उनको भूख लग गई, अब कुछ खा भी नहीं सकते, दूध भी नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने गलती से जो है इतना उनको भूख लगा कि एक पत्ता खा लिया, आग का पत्ता खा लिया। आग के पत्ते खाने से आग की रोशनी चली जाती, तो फिर जो है उनकी आग की रोशनी चली गई, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर जो है वो आए अंधेरे, फिर देखा कि जितने भी शिष्यगण थे, धौम ऋषि थे, सबने पता नहीं कहाँ गया वो उपमन्यु, भूख के मारे कहीं इधर उधर तो नहीं भाग गया, पता लगा किधर चला गया। तो जब उनको पता लगाया तो जंगल में थे, और फिर उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया, जो डॉक्टर्स हैं स्वर्ग के, उनको बुलाया। तो उन्होंने कुछ उनको दवाइयां दी, मेडिसिन की। बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बोले क्या हो गया? दवाई खा ला के ठीक हो जाए। नहीं खाऊंगा। बोले गुरु जी से पूछो, गुरु जी बोलेंगे तभी खाऊंगा। तो गुरु वही कहते हैं, बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ खा लेंगे, तब उन्होंने खाया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो गुरु है, गुरु के निर्देशों का पालन करना, गुरु के जो वीड्स को तभी वो निकालते हैं जब ग्राउंड तैयार है। वीड्स ऐसे नहीं निकालते हो, ठीक है ना, चल रहा है चल रहा है, लेकिन जब ग्राउंड तैयार है तब प्लग कर करके निकालते हैं। तो ग्राउंड जो है वो तैयार किसको करना पड़ेगा? गुरु को मौका तो मिलना चाहिए उसके वीड्स को निकालने का। जैसे मैंने गुरु जी मत निकालो, बड़ा अच्छा है, अनर्थ ही मेरे अर्थ है। प्रभुपाद जी कहते हैं अनर्थ जो है वो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये मैं जीऊंगा कैसे, अगर ये चला जाएगा मैं कैसे रहूंगा, ये कैसे रहूंगा। बट गुरु जो है वो थैली निकालते हैं ऐसे। तो इस प्रकार का इंडिपेंडेंस, और हमें इस प्रकार से डिफीटेड नहीं फील करना चाहिए गुरु के आगे, किसी शिष्य को डिफीटेड या पराजित नहीं, यू फील वेरी हैप्पी एंड एक्सटैटिक, है ना। जैसे मल त्याग करते हैं तो कितने खुश होते हैं, हाँ पेट साफ हो गया, बड़ा अच्छा। तो ये सारे जो अनर्थ है वो सब मल के समान है। तो ये क्लिंसिंग प्रोसेस है, और जिस प्रकार के अपेरेंट डिफीट है वो डिफीट नहीं है बल्कि एक्चुअल विक्ट्री है। तो शिव जी के इस प्रसंग से हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से हमें भगवान का अधीनस्थ होकर, भगवान की बहिरंगा अंतरंगा शक्ति का अधीनस्थ होकर गुरु के शेल्टर में रहकर रहना चाहिए, और इससे जो गुणगान है वो कितना बढ़ गया। अब देखेंगे जो शिव जी फिर पार्वती जी का वार्तालाप हो रहा, कितना अच्छा गुणगान कर रहे हैं भगवान का कि देखो मेरे भगवान कैसे हैं जो मुझे भी मोहित कर रहे हैं, मैं आपसे थोड़ी मोहित, इनसे इतना मोहित हो रहा हूँ, कितने अच्छे हैं ये। और उनका जो डिवोशन है, उनकी जो श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति और बढ़ गई, वो इंक्रीज हुई है पूरे सफर से। ठीक है, समय हो चुका है, कोई प्रश्न किसी का?
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। छोटे छोटे तीन प्रश्न थे। पहला कि जैसे जो जब असुरों को विमोहित किया था मोहिनी मूर्ति अवतार ने, तो वो बहिरंगा शक्ति से थे या अंतरंगा शक्ति से थे उस केस में, जब डायरेक्टली भगवान ने ये रूप धारण किया? यहाँ पे तो जैसे भगवान शिव जब विमोहित हो रहे हैं अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, तो जब असुरों को विमोहित किया था,
भगवान तो हमेशा वही रहते हैं, लेकिन हिज इंटरनल पोटेंशियल इज एक्टेड लाइक एक्सटर्नल पोटेंशियल। पोटेंशियल तो नहीं क्या है,
तो जो असुर के केस में वो बहिरंगा शक्ति कहेंगे भगवान
एक्टेड लाइक उस प्रकार से एक्ट किया, लेकिन है तो अंतरंगा शक्ति है। भगवान लीला कर रहे हैं तो अंतरंगा शक्ति ही है, लेकिन इस प्रकार से किया कि वो लग रहा था कि ये बहिरंगा शक्ति।
जैसे भगवान शिव की अंतरंगा या बहिरंगा जैसे बताया कि ये हम भेदभाव कर सकते हैं कि उसका क्या परिणाम है, जैसे भगवान शिव अंतरंगा शक्ति से मोहित थे और उसके परिणाम में उनकी श्रद्धा बढ़ी, तो ये तो हो गया एक, चलो एंड रिजल्ट जब वो परिणाम आया, परंतु जब वो उस प्रोसेस में थे, जैसे कि अभी का संदर्भ चल रहा है, तो अगर हम किसी कोई बहिरंगा शक्ति से आकर्षित होगा या अंतरंगा शक्ति से आकर्षित होगा, इस प्रोसेस जब ये दोनों की जो स्थिति है बिल्कुल ही सेम दिखती है, और शायद अंतरंगा शक्ति का जैसे बताते हैं सचित और आनंद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमेशा आनंदमय आनंद प्रदान करती है, परंतु जब यहाँ पर भगवान शिव की स्थिति देख रहे हैं तो बिल्कुल ही विपरीत देख रहे हैं शायद उसके, उनको बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं है। यहाँ
विपरीत दिखने में लग सकती है, जैसे गोपियां हैं वो भी हमेशा रोते रहती हैं, आप चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी आप देखेंगे बहुत क्राई करते हैं पिचकारी की तरह उनके आंसू, मतलब ये रोना और एक कामी व्यक्ति का रोना दोनों रोने बनते हैं ना, दिखने में लग सकता है कि एक जैसे है, जैसे भगवान श्री राम सीता के पीछे कि कहाँ है हासीते हासीते पत्र से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, जानवर से, लेकिन वो कोई साधारण लष्टी व्यक्ति नहीं है जो किसी स्त्री से बिच्छो हो में इस प्रकार का वो कर रहे हैं। दिखने में वही चीज, दिखने में बिल्ली का बच्चा और चूहा दोनों तो मुंह के अंदर ही है, दिखने में लगता है कह रहे हैं कि है। लेकिन दोनों के जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे पता चलता है।
तो यहाँ पर जो भगवान शिव का स्टेट ऑफ माइंड था बिल्कुल,
हाँ ही वाज हैप्पी, चलो
ड्यूरिंग द प्रोसेस आल्सो,
या अजामिल वाली स्थिति नहीं थी उनकी, अजामिल वाली स्थिति नहीं थी प्रोस्टिट्यूट के बारे में वो होता है।
तीसरे जैसे हमने बताया एक शिष्य गर्वित महसूस करता है जब वो डिफीट फील करता है अपने गुरु से,
आइडियली
ये तो हो गया जैसे शिष्य का पर्सपेक्टिव। अगर लीडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर वो किसी पे ऑपरेट करते हैं या जैसे 10 लोगों के बीच में ह्यूमिलेट करते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग शायद इस्कॉन छोड़ के भी चले जाते हैं, तो एक लीडर की दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंडर जो उनके केयर में जो डिवोटीज हैं तो उनको किस प्रकार से डील करना है और किस स्थिति में उनको पराजित करना है या वीड्स निकालने हैं इस प्रकार से।
तो लीडर को तो पहले ये समझना चाहिए कि मैं सर्वेंट लीडर, आई एम नॉट अ लीडर, आई एम सर्वेंट, मैं इनकी सेवा करने के लिए हूँ, और ये मेरे सेवक नहीं है, ये भगवान के सेवक है, बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो थोड़े समय के लिए मुझे ऐसा अपॉइंट किया गया इनकी सेवा करने के लिए, और जो इस प्रकार का ऑपरेशन होना चाहिए वो इस भाव से होना चाहिए ताकि ये he should uplift his consciousness. अगर ऐसे स्थिति में नहीं है, he is not in that level, तो leader को should be little patient. कि जो purpose क्या है कि उसका ध्यान येन केन प्रकारे मना कृष्ण निवेशयेत, कि वो कृष्ण से ज्यादा जुड़े. अगर हमारे ऐसे ऑपरेशन से, ऐसे डांट से, ऐसे फटकार से व्यक्ति कृष्ण भावना को छोड़कर ही चला जा रहा है, या भक्तों से दूर जा रहा है, या एंटी हो रहा है, तो ऐसे ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है. बेटर टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड जस्ट ऑब्जर्व, एंड व्हेन द अपॉर्चून टाइम कम्स, व्हेन इज, क्योंकि वीकनेस ऑफ द हार्ट, हृदय दौर्बल्यम, अगर हृदय अभी इतना दुर्बल है कि कुछ भी नहीं संभाल पाएगा एक छोटी सी चर्चा में, तो अभी उसके ठीक है, उसके हृदय को मजबूत करो. हृदय कैसे मजबूत होता है? उसकी श्रवण कीर्तन, हियरिंग, चैंटिंग, डिवोटी एसोसिएशन, नवदा भक्ति करके हृदय थोड़ा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तब जाके ईश्वर की, ऐसा नहीं कि एनी टाइम एनी प्लेस इन फ्रंट ऑफ.
इसमें कोई लीडर की पर्टिकुलर कोई योग्यता भी होनी चाहिए जो इस प्रकार का कार्य कर सके.
हाँ, लीडर शुड नो दैट डिवोटी, उनके साइकोफिजिकल नेचर को समझना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है. जब तक उसके साइकोफिजिकल नेचर को व्यक्ति समझेगा नहीं, अब समभाव से जो है, समान दृष्टि से कम्युनिज्म को फॉलो करते हुए एक ही तरह के सबको ट्रीटमेंट लागू कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड. He should know each and every devotee who is under his care. The understanding is psychophysical nature. किसी को एक शब्द बोलने में बात चल जाती है, किसी को बिना बोले बात चल जाती है, किसी को बहुत बोल के भी बात नहीं चलती. It depends upon the level of understanding. इस प्रकार का उसका होना चाहिए. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद.